नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। कहा, महाकुंभ में भारत संस्कृति और विरासत को मजबूत तथा समृद्ध बनाए रखने की मजबूत नींव रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, वैश्विक व्यवस्था विकसित देशों द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी। नई विश्व व्यवस्था में व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान की आलोचना की। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज बर्फबारी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। और रावलपिंडी में आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप क्रिकेट ट्रॉफी में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण रद्द की गई। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है और वह नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह सफल आयोजन नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। प्रयागराज जंक्शन पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा है कि प्रयागराज से लगभग 4,50,00,000 लोगों ने ट्रेनों के माध्यम से यात्रा की। श्री वैष्णव ने कहा है कि महाकुंभ के लिए 21 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए। उन्होंने कहा है कि इस महाआयोजन में सभी विभागों का पूरा सहयोग रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रयागराज महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के पावन स्नान के साथ संपन्न हो गया। 45 दिनों के इस विराट आध्यात्मिक आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आज सुबह 2:30 पर करीब असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र असम के मोरीगांव के पास था। इधर राजधानी ईटानगर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे देर रात कई निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एकता नगर में एकता कौशल विकास केंद्र का दौरा करने का कार्यक्रम भी है। गृहमंत्री अमित शाह आज सतना जिले के चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर सभी चुनौतियों के बावजूद भारत विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारमन ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्रीकरण के कारण अनेक चुनौतियां सामने आ रही है। वैश्विक व्यवस्था विकसित देशों द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि व्यापार और प्रौद्योगिकी नई विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत को इसमें प्रतिस्पर्धा करना होगा। सुश्री सीतारमन ने कहा है कि विकसित देशों को भी प्रौद्योगिकी और प्रतिभा की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 98वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर एक विफल देश बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन क्षितिज त्यागी ने जिनोवा में पाकिस्तान के नेताओं पर अपने सैन्य आतंकवादी परिसर में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने हाल के वर्षों में क्षेत्र की उल्लेखनीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का हवाला देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। श्री तागी ने इस्लामिक सहयोग संगठन को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की और कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का समय एक ऐसा देश बर्बाद कर रहा है जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर रहता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन आज से भारत की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। श्रीमती लेन की ये तीसरी भारत यात्रा होगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को अपनाने और इसके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भाषा को भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बांधने वाला धागा बताया। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया। श्री सिंह ने हिंदी को बढ़ावा देने में रक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की। पत्रिका में सशस्त्र बल कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताओं के साथ साथ सरकार की नीतियों पर मंत्रालय के कर्मियों के लेख लिखे शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत समेत सरकार के रणनीतिक पहले नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा है कि पहले उत्पादों की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता थी विषय थी, लेकिन आज देश गुणवत्ता क्रांति में महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। उन्होंने कहा है कि हमें आधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय झाजू ने कहा है कि मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लोगों को एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने आज बेंगलुरु में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स AVGC सेक्टर के लिए GAFX कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जाजू ने कहा है कि शिखर सम्मेलन कंटेंट क्रिएटर्स और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को एक साथ आने और देश में AVGC क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित करेगी। दिल्ली विधानसभा में पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG रिपोर्ट पर चर्चा आज फिर से शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा है कि रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि आबकारी नीति से सरकारी खजानों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान हुआ। भाजपा के एक अन्य विधायक शिखर रॉय ने कहा है कि CAG रिपोर्ट के आधार पर जांच की जानी चाहिए और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट भी आई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता आतिशी ने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक निलंबित है, इसलिए उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सदन में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों के व्यवहार को देखते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन कानून के अनुसार चलेगा। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा है कि अगर विपक्ष हंगामा करता है तो अध्यक्ष को फैसला लेने की मंजूरी देनी पड़ेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। रावलपिंडी में ICC पुरुष चैंपियनशिप क्रिकेट ट्रॉफी में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण रद्द किया गया है। दोनों ही टीमें अब तक टूर्नामेंट में जीत का खिताब नहीं हासिल कर पाए हैं। और महिला प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स से मुकाबला करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा वैश्विक व्यवस्था विकसित देशों द्वारा निर्धारित की जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान की आलोचना की। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज बर्फबारी और रावलपिंडी में ICC पुरुष चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण रद्द। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।